This is an ABP Life podcast.
जब मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही थी तब एक शो आया करता था, द न्यूज रूम। अब नाम से तो आप सब समझ ही गए होंगे कि ये किसके बारे में था। ऑब्वियसली एक न्यूज रूम कैसे काम करता है, कैसे चलता है, ये शो वो दिखाता था। इसी सीरीज का जो दूसरा सीजन था वो एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था जो मुझे उस समय बहुत ही बेसिक लगता था, वॉर क्राइम। अब मेरी समझ में तो वॉर ही क्राइम था, तो अब वॉर में कुछ भी करो वो तो क्राइम ही होगा, साथ में जिसने किया वो हुआ वॉर क्रिमिनल, है ना? जी नहीं, ये कॉन्सेप्ट इतना सस्ता और आसान नहीं जितना मुझे आज से 10 साल पहले लगा करता था। उस शो के अंत में हालांकि मुझे हल्का फुल्का अंदाजा तो हो गया था कि भैया ये वॉर क्राइम और वॉर क्रिमिनल दोनों ही बहुत ही गंभीर शब्द हैं और आप यूं ही हवा में इस्तेमाल नहीं कर सकते ये शब्द, और ये शायद सही समय है इस पर विचार करने का कि आखिर क्यों हैं ये शब्द इतने गंभीर और इतने पेचीदा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं साहिबा खान और आप सुन रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश FYI, यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो रशिया और यूक्रेन की जंग को दोस्तों एक महीना हो चुका है। इसी बीच रशिया ने यूक्रेन में कई इमारतें और कल्चरली सिग्निफिकेंट चीज़ों को तहस नहस किया। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पर जाएं तो अभी तक यूक्रेन में करीब 977 लोग मारे जा चुके हैं और इनमें से करीब 155 औरतें और लड़कियां हैं और 42 बच्चे। डेढ़ हफ्ते पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये तबाही देखते हुए कह दिया कि भैया पुतिन एक वॉर क्रिमिनल है। हालांकि बाद में उनके ऑफिस से उनकी प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी का बयान आया कि ये बयान जो बाइडेन ने दिया है वो शायद बहुत भावुक होकर के दिया है और इसे फेस वैल्यू पर ना लिया जाए। मगर इतने से शब्द के लिए व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी को आना क्यों पड़ गया? क्या होते हैं वॉर क्रिमिनल्स और क्या यूं ही बगैर सोचे समझे आप किसी को भी वॉर क्रिमिनल घोषित कर सकते हैं? आज बात होगी कि आखिर क्यों इतनी बड़ी तबाही और त्राही के बावजूद देश पुतिन को वॉर क्रिमिनल घोषित नहीं कर रहे और क्या मायने हैं एक वॉर क्रिमिनल होने के। अगर ये इतना गंभीर कॉन्सेप्ट है, अगर ये इतना ही गंभीर कॉन्सेप्ट है तो हम आपको यूं ही थोड़ी बता देंगे। इसलिए हमने बात की इस पॉडकास्ट के गेस्ट एक्सपर्ट साइकत दत्ता से। साइकत डीप स्ट्रैट नाम की ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग पार्टनर हैं, ORF में काम कर चुके हैं, डीप स्ट्रैट सिक्योरिटी और डिफेंस पर पॉलिसीज बनाते हैं, स्ट्रैटेजाइज करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं। अपने 20 साल के करियर में साइकत न्यूज़पेपर से लेकर डिजिटल मीडिया तक हर जगह अपनी छाप छोड़ चुके हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसीज एंड सिक्योरिटी पर इन्होंने खासा अच्छा काम किया है। आज साइकत से बात करके हम समझेंगे कि वॉर क्राइम और वॉर क्रिमिनल क्या होते हैं। हाय साइकत, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट।
थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
पहले अभी हमने देखा कि जो बाइडेन ने कुछ 10-15 दिन पहले अभी बोला कि पुतिन जो है वो वॉर क्रिमिनल है, और उसके बाद हमने देखा कि व्हाइट हाउस किस तरीके से सफाई देने आ गया कि नहीं भाई, मतलब हो सकता है वो भावुक हो गए हैं इसलिए वो बोल रहे हैं। तो इतना सब जो त्राही मचा रहा है जो पुतिन, उसके बावजूद उनको वॉर क्रिमिनल क्यों नहीं कहा जा रहा?
जी साहिबा, अगर आप देखें 1949 में यूनाइटेड नेशंस ने जिनीवा कन्वेंशन पास किया था जिसमें इन्होंने इनका जो तजुर्बा था, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हम देखें और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कुछ ट्रायल्स हुए थे जिसको कहते हैं न्यूरमबर्ग ट्रायल्स, जिसमें जो एक्सिस पावर्स थे जिसमें कि जापान और जर्मनी के और इटली के जितने भी लीडर्स थे और जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गए, तो फिर उनके साथ उनके जो लीडर्स थे उनको ट्रायल किया गया। उस ट्रायल में फिर इनके साथ वो जो कुछ डेफिनेशंस थे वॉर क्राइम्स के वो तब उभरने लगे, और इसके पहले भी 19th सेंचुरी में कुछ कन्वेंशंस हैं कि कुछ बेसिक तौर तरीके हैं कि अगर जंग होगी तो फिर जंग में कैसे लड़ा जाएगा और उसमें किन किन रूल्स को आपको मानना पड़ेगा। ऐसे कई कई ऑलमोस्ट 100 सालों से चल रहा था, बट 1947-45 और 47 के बीच काफी काम हुआ नूरनबर्ग ट्रायल्स के बाद, और फिर 1949 में जिनीवा कन्वेंशन आ गया। बट अगर आप फिर देखें, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बना, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आने के बाद यूनाइटेड नेशंस में एक रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आया, जिसमें वो स्टैट्यूट में एक आर्टिकल 8 है जिसमें वॉर क्राइम्स का हर तरीके से कि किन किन परिस्थितियों में अगर कोई कॉम्बैटेंट, मतलब अगर कोई जो लड़ रहे हैं, जो कॉम्बैट में या कॉन्फ्लिक्ट में, वो अगर कुछ हरकतें करें तो उनको वॉर क्राइम्स के दायरे में डाला जाएगा। तो ऐसे कई सारे दायरे हैं जो अब ग्लोबली रिकग्नाइज किया जाता है कि ये वॉर क्राइम्स है।
सर, तो क्या है वो दायरे, मतलब कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं?
सो एक तो आपके जिनीवा कन्वेंशंस हैं जो 12 अगस्त 1949 में उन्होंने किया था, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि मान लीजिए आपने जानबूझ के किसी की जान ली और कोई निहत्ता है या वो लड़ नहीं पा रहे हैं और फिर भी आपने जानबूझ के उनकी जान ली, तो ये वॉर क्राइम कहा जा सकता है। अगर आपने किसी बंदी को टॉर्चर किया और उनके ऊपर कोई बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया, तो फिर उसको भी मानते हैं कि वॉर क्राइम है। जानबूझ के आपने उनकी सफरिंग को बढ़ाया, उनके तकलीफ को बढ़ाया और सीरियस इंजरी दिया, फिर प्रॉपर्टी डैमेजेस और स्पेशली सिविलियन प्रॉपर्टी डैमेज, अगर उस पर आपने भारी भरकम आपने हमला किया उसके ऊपर, और फिर कोई वॉर स्ट्रेटजी में उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, फिर भी आपने सिविलियन प्रॉपर्टी को काफ़ी आपने उस पर धावा बोला, उसका डिस्ट्रक्शन हुआ, तो वो भी वॉर क्राइम है। फिर ऐसे और हैं कि जैसे आप कोई हॉस्टेज नहीं ले सकते, आप सिविलियंस को बंधक नहीं बना सकते, ऐसे कई सारे हैं जिन्होंने उन्होंने वॉर क्राइम्स के दायरे में डाला।
जी, तो साइकर, जैसे हमने अभी रिपोर्ट्स में देखा कि हॉस्पिटल्स को बॉम्ब किया गया है, कई बच्चे औरतें, और आप जैसे बात कर रहे हैं कि जो लोगों के पास आर्म्स नहीं है उनको भी मारा गया है, तो क्या उनको, पुतिन को अगर हम एक वॉर क्रिमिनल घोषित करते हैं तो क्या ये सही होगा? और एक इंसान को वॉर क्रिमिनल घोषित करने का प्रोसीजर क्या होता है अगर कुछ होता है?
तो पहले आप देखें कि परिस्थिति क्या है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, एक देश ने दूसरे देश पे हमला किया है, सो दैट इटसेल्फ इज इनिशियली अ वायलेशन। अगर आप किसी दूसरे देश पे उसको ऑक्यूपाई करने के लिए अंडर करंट लॉज आप कोशिश करते हैं, सो इन अ वे, एंड इट इज नॉट बीन सैंक्शन बाय द यूनाइटेड नेशंस। फॉर एग्जांपल, जब अमेरिका ने 1990 में इराक पे हमला किया था और फिर 2001 में फिर से ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, दोनों बार अमेरिका के ने यूनाइटेड नेशन से सैंक्शन लेके फिर उन्होंने उन पे हमला किया। बट इस मामले में रशिया को ऐसा कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई सैंक्शन नहीं मिला और उन्होंने हमला कर दिया। प्रेसिडेंट पुतिन का अगर आप देखें तो उन्होंने इसको अभी तक वॉर नहीं कहा है, इन्वेजन नहीं कहा है, सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन कहा है। बट अगर आप देखें तो इंटरनेशनल जो भी कन्वेंशन है सारे एक तरीके से उन्होंने उल्लंघन किया है। पर उसके बाद जब आप लड़ाई कर रहे हैं तो आपके जो सोल्जर्स हैं, आपके जो आर्मी है, उन्होंने सिविलियन एरियाज पे काफी हमला किया है, जैसे आर्टिलरी बॉम्बिंग उन्होंने किया है, रॉकेट बॉम्बिंग जो है, और जो वीडियो एविडेंस अब हमारे सामने है, काफी सारे सिविलियन बिल्डिंग्स हैं जिसमें कोई मिलिट्री वैल्यू नहीं है, हॉस्पिटल्स डेफिनेटली कोई मिलिट्री वैल्यू नहीं है, और ऐसे भी कुछ बिल्डिंग्स हैं जहां बाहर क्लियरली रशियन में लिखा हुआ था कि इस बिल्डिंग के अंदर बच्चे हैं, उन बिल्डिंग्स पे भी हमला हुआ है। तो ये काफी सारा जो वीडियो एविडेंस आ रहा है ये क्लियरली आर्टिकल 8 के अंडर स्ट्रेट अवे वॉर क्राइम्स बनते हैं। बट आपका जो दूसरा भाग था सवाल का कि इसको कैसे पुतिन को, क्या उनको वॉर क्राइम्स माना जा सकते हैं, ये ओनली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ही उनको वॉर क्रिमिनल कह सकते हैं, क्योंकि ये मैटर ऑफ ट्रायल है।
तो उसका रिपरकशंस क्या होंगे रशिया के लिए अगर उसे घोषित कर दिया गया कि वो एक वॉर क्रिमिनल है?
अगर आप स्ट्रिक्टली देखें तो बहुत सारे रिपरकशंस नहीं होंगे, बट यूजुअली क्या होता है कि अगर आप किसी बड़े सीनियर ओहदे में किसी लीडर को या किसी प्रेसिडेंट को आप वॉर क्रिमिनल उस कोर्ट के दायरे से डिक्लेयर कर देते हैं, फिर उनके ट्रैवल में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगा, उनके ऊपर सैंक्शंस भी आ जाएंगे। जैसे वो अपने कंट्री से बाहर जाएंगे उनको अरेस्ट किया जा सकता है, या अगर उनके खुद कंट्री में अगर कोई चेंज ऑफ गवर्नमेंट होता है फिर आपको वापस अरेस्ट किया जा सकता है। तो कई सारे दिक्कतें इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से किया जा सकता है।
जी, आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि इस समय किसी को भी या किसी देश को या किसी राजनेता को वॉर क्रिमिनल घोषित कर देना कितना रेलेवेंट है?
देखिए, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी पे डिपेंड करता है। जैसे आप देखिए सैंक्शंस जो होते हैं, सैंक्शंस को आप किस हद तक लेके जाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर आप किसी को घोषित करते हैं वॉर क्रिमिनल्स, उसको कितनी स्ट्रिक्टली आप एनफोर्स करेंगे उस पर डिपेंड करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, जब ये सर्बियन लोग लीडर्स को उन्होंने पकड़ा था, एक तरीके से उनका ट्रैवल पे ऑलमोस्ट बैन हो गया था, कई सालों तक उनको छुप के रहना पड़ा। तो जब आप छुप के एग्जाइल में रहते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में काफी बदलाव आते हैं, आपको उतना फ्रीडम मिलता नहीं है। वैसे ही जैसे कि सैंक्शंस है, अब सैंक्शंस अभी तक स्विफ्ट जो पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है उसमें से इनको पूरा पूरा निकाला नहीं है जितना एनफोर्स करना चाहते हैं, तो सैंक्शन पे अभी भी काफी स्कोप है जो और टाइट कर सकते हैं। इसलिए रशियन इकोनॉमी उस हद तक नहीं गिरी है जितना हो सकता है। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कितना एनफोर्स करना चाहते हैं।
जी जी, थैंक यू साइका, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट, टेकिंग आउट सम टाइम एंड टॉकिंग टू मी एंड टॉकिंग टू आवर लिसनर्स एज वेल। थैंक्स अ लॉट।
Thank you so much. धन्यवाद।
जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे साइकत और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें इस शब्द के मायने समझाए, सिग्निफिकेंट समझाया। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा कि आखिर क्यों वॉर क्राइम और वॉर क्रिमिनल हल्के में लेने वाले शब्द नहीं हैं, और अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं तो अंजाम भी भयानक हो सकते हैं। फिलहाल मैं चलती हूँ, फ्राइडे के हिसाब से काफ़ी हेक्टिक हो गया है शायद ये एपिसोड, बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी था, ये तो आपको मानना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको थोड़ा ब्रेक देती हूँ, आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी सीधा सोमवार को सुबह के बुलेटिन में, जिसका नाम है खबर दिन भर। अपना वीकेंड एंजॉय करें और सुनते रहें एबीपी लाइव पॉडकास्ट। नमस्कार।
हर पल बदलती दुनिया में कोई अपडेट मत करो मिस, डाउनलोड करो एबीपी लाइव ऐप और जानते रहो।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।